हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लेकिन जिस तरह से तारा परी को अपनी बेटी को लेकर डर लगने लगा था, वही जिन्नातों का इतना ज्यादा उत्साह देखने के बाद अब उसे भी अपनी बेटी के लिए डर लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर सभी जिन्नातों ने उसकी बेटी से इस तरह की उम्मीदें लगा ली हैं, तो क्या वाकई उसकी बेटी उनकी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी, क्योंकि वो एकदम फूल के समान कोमल और बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी सी थी। तो क्या वो इतनी बड़ी काली शक्तियों से मुकाबला कर पाएगी? कहीं ना कहीं अमन को भी अब इस बात की चिंता सताने लगी थी। जल्दी ही सभी जिन्नातों ने आगे बढ़कर जिन अंश का स्वागत किया था और अपने अपने सिरे से उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए थे। करिश्मा जी और अमरेंद्र जी दोनों काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें इस मोमेंट का न जाने कितने वर्षों से इंतजार था। वेल, तभी अचानक अमन ने जिन अंश को करिश्मा जी की गोद में से ले लिया था और कहने लगा था, मॉम, काफी देर हो गई है, मुझे लगता है कि हमें अब वापस जाना चाहिए। तारा इंतजार कर रही होगी और उसे हमारी बेटी की चिंता हो रही होगी। तभी करिश्मा जी हैरान हो गई थीं, क्योंकि अमन ने जिस लहजे से कहा था वो उन्हें कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया था। आखिरकार अमन अभी नया नया तो बाप बना है, तो नई नई तो उसके अंदर इमोशंस होंगे। यही सोचते हुए करिश्मा जी ने अमन को कुछ नहीं कहा था और कहने लगी थीं, लेकिन बेटा, अभी पहले जिन अंश का नाम तो रख लिया जाए, उसके बाद ही तो हम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। शायद तुम भूल रहे हो, जिन्नातों के वंशज का नाम रखने का अधिकार सभी जिन्नों का होता है। जितने भी जिन इस वक्त यहाँ हजारों लाखों की तादाद में मौजूद हैं, वे सब आपस में सलाह मशवरा करके हमें कोई एक नाम बताएंगे, और वही एक नाम हमें अपनी इस छोटी सी नन्ही सी जिन अंश का रखना होगा। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमन इस वक्त चुप हो गया था और कहने लगा था, अब मुझे क्या करना होगा करिश्मा मॉम? तभी करिश्मा जी कहने लगी थीं थोड़ी सी तेज आवाज में, सभी से बोलो कि सभी जिन मेरी बात ध्यान से सुने। तुम्हारी जिन अंश इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है, तो उसे अपनी तरफ से कोई अच्छा सा और प्यारा नाम दो, और ये तुम्हें तुम्हारा जिन महाराज हुक्म दे रहा है। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमन ने वैसा ही किया था। उसने तेज आवाज में खड़े होकर कहना शुरू कर दिया था, मैं सभी जिन्नों को हुक्म देता हूँ कि अपनी जिन अंश का कोई अच्छा सा नाम दे, ताकि हम उसे उसी नाम के द्वारा संबोधित कर सके। अब जैसे ही अमन ने ये कहा, सभी जिन एक दूसरे को देखने लगे थे और जल्दी ही वे लोग आपस में कोई एक नाम डिस्कस करने लगे थे। वहीं अमन के दिल में अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि न जाने ये जिन उसकी बेटी का क्या नाम रखेंगे। उसे तो सोचा था कि अपनी चांद सी बेटी का नाम वो और तारा दोनों मिलकर रखेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिन अंश का नाम रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिन्नों का होता है। तो इसीलिए अब अमन को मजबूरन अपने सभी जिन्नों से ये कहना पड़ा था। लेकिन अमन ने सोच लिया था कि अगर इन जिन्नों ने उसकी बेटी का कोई अच्छा सा नाम नहीं बताया, तो वो उस नाम को बिल्कुल भी नहीं रखेगा। वैसे भी वो जिन महाराज है, उसके बाद टालने की हिम्मत भला किसमें है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अमन बेसब्री से उन लोगों का कोई ना कोई अच्छा सा नाम रखे जाने का इंतजार करने लगा था। वहीं दूसरी ओर तारा उस वक्त काफी ज्यादा बेचैन हो उठी थी। वो अपनी बेटी को अपनी गोद में लेना चाहती थी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी बेटी उसकी गोद में नहीं होगी। उसे वो हर हाल में अपनी बेटी को अपने आप से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं करना चाहती थी, और जब से उसकी बेटी जिन्नातों की दुनिया में गई थी, तब से उसे रह रहकर उसकी याद सताने लगी थी। तब सोनल परी और साथ ही साथ रानी माँ ने तारा को समझाते हुए कहा था, अगर तुम इस तरह से इंसानों की तरह बर्ताव करोगी, तो तुम्हारे लिए आगे चलकर काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम एक मामूली इंसान नहीं हो, तुम एक परी हो और होने वाली रानी परी भी हो, तो तुम्हें हर तरह से हिम्मत रखनी होगी। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बेटी केवल तुम्हारी बेटी ही नहीं, बल्कि जिन्नातों की वंशज भी है, तो उनके भी अपने कुछ कायदे कानून हैं, जिन्हें वे हर हाल में पूरा करना चाहेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर तारा ने उन्हें फिर से चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी थी, मैं सारी बातें अच्छी तरह से जानती हूँ रानी माँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा ये दिल समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे रह रहकर अपनी बेटी की याद सता रही है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मैं उसे एक पल के लिए अपनी आंखों से अलग नहीं करना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है, लेकिन मेरे दिल में ये अजीब सी फीलिंग भर उठी है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। ना तो मैं परलोक जाऊंगी और ना ही मैं यहाँ जिन्नातों के वंशज के साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी को परीलोक में भी खतरा है और साथ ही साथ यहाँ पर जिन्नों के बीच में भी खतरा है। इसीलिए मैं अपनी बेटी को हर तरह के खतरे से दूर कहीं और लेकर चली जाऊंगी। अब जैसे ही तारा परी ने अचानक से ये कहा, रानी माँ उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी थी और उसके पास जाकर बड़े ही प्यार से उसने तारा परी का हाथ थाम लिया था और कहने लगी थी, मुझे पूरी उम्मीद थी मेरी बेटी पैदा होने के बाद इसी तरह की बातें करेगी, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर जल्दी ही रानी माँ ने अपने दोनों हाथों को तारापरी की आंखों पर रख दिया था और देखते ही देखते तारापरी की आंखों के सामने उसका छोटा सा बचपन आ गया था, जब छोटी सी तारा रानी माँ की गोद में आई थी। तब रानी माँ का बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था। जब तारापरी पैदा हुई थी तब परीलोक में एक बहुत बड़ी देवी ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी इस बेटी के पीछे एक ऐसा राक्षस लगेगा जो उसकी जवानी का भोग करेगा इतना, और फिर इसकी शादी भी एक जिन से होगी और उसे वक्त वक्त पर काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर हाल में जीत इसकी ही होगी। तब रानी माँ काफी ज्यादा विचलित हो उठी थी और वो कहने लगी थी, मैं अपनी बेटी के ऊपर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी, और अगर परीलोक में उसके पीछे कोई राक्षस पड़ेगा तो मैं परीलोक को ही छोड़ दूंगी और अपनी बेटी के साथ कहीं और जाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। और जैसे ही तारापरी ने ये देखा, अचानक से उसकी आंखों में मोटे मोटे मोती आ गए थे और वो समझ चुकी थी कि ये समय का चक्र है। जिस तरह से बरसों पहले उसकी माँ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता कर रही थी और तड़प रही थी, उसी तरह से आज तारापरी भी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता कर रही है और तड़प रही है। तभी तारा ने अपनी रानी माँ को गले से लगा लिया था। तब रानी माँ कहने लगी थी, तो जानती है, जब बड़ी ही खूबसूरत सी मेरी बेटी मेरी गोद में आई थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं इसे हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की मुश्किलों से दूर रखूंगी। लेकिन मेरी बेटी, तुझे ये बात याद रखनी होगी और साथ ही साथ समझनी थी होगी, जिसकी किस्मत में जितना ज्यादा दुख लिखा है उसे उतना मिलकर ही रहेगा। उसके कष्ट को हम उसके जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, उन दुखों और मुश्किलों से लड़ने में हम उसकी मदद जरूर कर सकते हैं। और एक बात, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जैसे जैसे तुम्हारी बेटी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उसे अपनी जिंदगी जीने का तजुर्बा भी मिलता जाएगा, और तुम देखोगी तुम्हारी बेटी न केवल परीलोक में जाकर उस राक्षस का अंत करेगी बल्कि जिन्नातों की भी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
अब जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, तारापरी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया था और रोने लगी थी। वहीं सोनल परी आगे आई थी और कहने लगी थी, तारा, कब तक ये सब चलता रहेगा? तू अच्छी तरह से जानती है मैं तेरी आंखों में मोती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और अगर रोना ही है तो मैं रोऊंगी ना। अब तो मेरे आंखों से आंसू निकला करते हैं, मोती नहीं निकला करते हैं। तुम मुझे बताना कि तुम्हारा रोने का दिल कर रहा है तो तुम्हारे हिस्से का मैं रो लिया करूंगी। अब जैसे ही सोनल परी ने थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए इस तरह से बातें कही थी, अब तारा मुस्कुरा दी थी और रानी माँ जल्दी ही उन लोगों से विदा लेकर परलोक चली गई थी। और तारा परी अब बेसब्री से अपनी बेटी के जिन्नातों की दुनिया से वापस लौटने का इंतजार करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर वो राक्षस की माँ अपने उस शस्त्र को, जो शस्त्र उसने पैदा किया था, उसे वापस आने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में तो थी, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि कोई ना कोई चूक ये लोग जरूर करेंगे, और जैसे ही ये लोग कोई ना कोई भूल करेंगे उसके बाद वो उसे अपने उस राक्षस को रिहा करवाएगी और बहुत जल्द वो इस जिन अंश का भी अंत कर देगी। आखिरकार कब तक सफ़ेद जिन तुझे बचा कर रखेंगे? तो इसीलिए उसने 24 घंटे के लिए अपने शस्त्र को, यानी कि उस नौजवान को, अमन के बंगले में भेज दिया था कि जब भी जिन अंशों से जादुई शॉल के बिना देखे ठीक उसी वक्त उसका कत्ल कर दे, क्योंकि केवल 15 दिन ही उनके पास है, इससे ज्यादा का उनके पास नहीं है। ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी और उसके बाद उन्हें जिन अंश की ताकत का भी अच्छी तरह से अंदाज़ा था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही सभी जिन्नातों ने अच्छी तरह से तारापरी की बेटी का नाम डिसाइड कर लिया था और उन्होंने सभी ने मिलकर एक नाम बताना शुरू कर दिया था। एक लेडीज जिन सामने आई थी और जिन महाराज के सामने सर झुकाकर खड़ी होकर कहने लगी थी, हम सभी ने जिन अंश का नाम सोच लिया है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन अंश का नाम हमने तराना सिंह राठौड़ रखा है। जैसे ही अमन, करिश्मा जी और अमरेंद्र जी ने ये सुना, उनका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन्नों ने उनकी बेटी का नाम तराना रखा था। तराना एक बड़ा ही खूबसूरत नाम था जो बिल्कुल तारापरी के नाम पर ही था। वहीं अमन के चेहरे पर भी अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी। वो खुद अपनी बेटी का नाम अपनी पत्नी के नाम के आसपास ही रखना चाहता था और तराना में अमन का न भी आता था, तो कहीं ना कहीं अब तराना नाम से अमन और तारा दोनों ही एक दूसरे से जुड़ चुके थे और दोनों के नाम जोड़ने के साथ उनकी बेटी का नाम रखा गया था तराना सिंह राठौड़। तभी अमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और इस खुशी में उसने सभी जिन्नातों का शुक्रिया अदा किया था। वहीं करिश्मा जी ने भी तराना के माथे को चूम लिया था और कहने लगी थी, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी तराना परी। अब जैसे ही उन्होंने अपने मुंह से तराना परी कहा, अमन हैरानी से कहने लगा, क्या माँ, मेरी बेटी जिन परी नहीं है? तभी करिश्मा जी मुस्कुराने लगी थी और मन ही मन में सोचने लगी थी, न जाने मेरे बेटे को कब पता चलेगा कि इसकी बीवी एक परी है, और इसी के साथ ये भी पता चलेगा कि उसकी बेटी ना केवल परी होगी बल्कि वो एक जिन भी होगी। पर ऐसा पहली बार होगा जब एक जिन अंश परियों की शक्तियों के साथ पैदा हुआ होगा। अब क्योंकि छोटी सी जिनंज का नाम रखा जा चुका था, जल्दी ही वे लोग अब वापस से अमन की हवेली में आ गए थे। और जैसे ही वे अमन की हवेली में आए, अचानक से अमन को एहसास हुआ मानो कि कितनी ही सारी काली शक्तियां उसके आसपास हैं, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये बात उसने अपनी मॉम करिश्मा जी के कानों में डाल दी थी कि उसे एहसास हो रहा है कि काफी सारी काली शक्तियां इस वक्त उसके आसपास हैं। तभी करिश्मा जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये सोल तेरी तराना के जिस्म पर रहेगी, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो इसे छू भी सके। तब जैसे ही अमन ने ये सुना, उसने राहत की सांस ली थी। और तभी तारापरी वहां आई थी। तारा ने आते ही अमन की गोद से तराना को ले लिया था और कहने लगी थी, आप लोग कहाँ रह गए थे? मैं आपकी कब से इंतजार कर रही थी। इतना समय क्यों लगा दिया आने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई थी? ना, सब ठीक था ना? अब जैसे ही तारा ने इस तरह से सवाल करना शुरू किया, करिश्मा जी मुस्कुराकर कहने लगी थी, हाँ हाँ तारा बेटी, हम बिल्कुल ठीक है। अमन भी ठीक है, अमरेंद्र जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और हमारी प्यारी जिनंज तराना भी ठीक है। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा कि तुम्हारी प्यारी जिनंज तराना भी ठीक है, तभी तारा हैरानी से कहने लगी थी, तराना? कौन तराना? तभी अमन ने कहना शुरू कर दिया था, वो सभी जिन्नों ने मिलकर हमारी बेटी का नाम तराना रखा है। अब जैसे ही तारा थोड़ा सा चिढ़ गई थी और कहने लगी थी, आप लोगों ने मेरी बेटी का नाम भी रख दिया, लेकिन मुझे इसके बारे में पूछा तो दूर की बात है, कुछ डिटेल्स भी लेना जरूरी नहीं समझा। तारा का इस तरह से गुस्सा करना करिश्मा जी बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।